एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, ग्रंथसार में आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जो सच कहूं तो झकझोर के रख देता है। ऐसे कॉस्बी का 2021 में प्रकाशित उपन्यास रेजर ब्लेड टीयर्स।
हाँ, कॉस्बी आजकल अमेरिकी क्राइम फिक्शन में एक बहुत बड़ा नाम है, खासकर जिसे सदर्न नुआर या रूरल नुआर कहते हैं।
ये सिर्फ क्राइम की कहानी नहीं होती ना?
बिल्कुल नहीं, ये क्राइम के बहाने दक्षिणी अमेरिका की वो गहरी परतें खोलती हैं, नस्ल, वर्ग, मर्दानगी, पहचान, बहुत कुछ।
और कॉस्बी की लेखनी की खासियत शायद यही है कि किरदारों का अंदरूनी संघर्ष वो बाहरी एक्शन जितना ही दमदार होता है।
सही कहा, रेजरब्लेड टीयर्स भी वैसा ही है। ऊपर से देखें तो क्राइम थ्रिलर, लेकिन दिल में झांकें तो ये पिताओं के दुख की कहानी है, उनके गहरे पछतावे की और मुक्ति की तलाश की।
तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे, किरदारों के साथ उनके भावनात्मक सफर को समझने की कोशिश करेंगे और वो बड़े सवाल भी देखेंगे जो ये उपन्यास हमारे सामने रखता है।
और ये सफर, जैसा आपने कहा, आसान नहीं है। किताब का नाम ही देखिए, रेजर ब्लेड टीयर्स। ये सच में पाठक के दिल पर किसी ब्लेड की तरह छुपता है, दर्द देता है, निशान छोड़ जाता है।
हाँ, और सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे कैसे बेपनाह मोहब्बत और उतने ही गहरे पूर्वाग्रह एक ही इंसान के अंदर रह सकते हैं।
बिल्कुल, कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी ट्रेजेडी से होती है जो दो बिल्कुल अलग पिताओं को एक अजीब मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है।
हाँ, कहानी वर्जीनिया के ग्रामीण इलाके की है। एक तरफ हैं आइज़ैक आइक रैंडोल्फ।
आइक अश्वेत है, अपना आपराधिक अतीत पीछे छोड़ चुके हैं, मेहनत करके एक सफल लैंडस्केपिंग का बिजनेस बनाया है, समाज में इज्जत है।
और दूसरी तरफ
दूसरी तरफ है बडी ली जेंकिंस, श्वेत मैकेनिक, शराब की लत है, गरीबी से जूझ रहे हैं, मतलब जिंदगी थोड़ी बिखरी हुई सी।
सतह पर तो कोई मेल नहीं दिखता।
बिल्कुल नहीं, सिवाय एक चीज के, एक भयानक दुख।
उनके बेटों इसाया रैंडोल्फ और डेरिक जेंकिंस की बेरहमी से हत्या कर दी गई है।
और कहानी में एक और परत तब जुड़ती है जब पता चलता है कि इसाया और डेरिक सिर्फ दोस्त नहीं थे।
वे एक विवाहित समलैंगिक जोड़ा थे।
हाँ, और ये सच्चाई ये इन दोनों पिताओं के दुख में अपराध बोध का एक भारी बोझ डाल देती है।
दोनों ही इस अफसोस से जूझ रहे हैं कि वे जीते जी अपने बेटों के रिश्ते को, उनकी पहचान को पूरी तरह से अपना नहीं पाए थे।
उनका दुख सिर्फ बेटों को खोने का नहीं है, बल्कि उन्हें पूरी तरह न समझ पाने की, न स्वीकार कर पाने की अपनी नाकामी का भी है।
यही कॉस्बी बहुत गहराई से पकड़ते हैं, उस अंदरूनी कश्मकश को।
हाँ, ये सिर्फ मौत का दुख नहीं, ये अपनी सोच पर, अपने पूर्वाग्रहों पर शर्मिंदगी का दुख है। शायद वही है रेजर ब्लेड टीयर्स।
और इस व्यक्तिगत त्रासदी के बीच जो सिस्टम है, समाज है, वो भी साथ नहीं देता।
पुलिस जांच, डिटेक्टिव कॉब है इंचार्ज, वो बहुत धीमी है, उदासीन सी,
जैसे कोई परवाह ही ना हो।
बिल्कुल ऐसा लगता है कि शायद पीड़ितों की लैंगिकता, उनका अंतरजातीय संबंध, इन वजहों से मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा।
तो जब न्याय का रास्ता बंद सा दिखता है,
तब ये दो पिता एक ऐसा रास्ता चुनते हैं जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। वे अपने बेटों की कब्र पर मिलते हैं।
वो मुलाकात तो तनाव भरी रही होगी।
बहुत। नस्लीय दूरी, सामाजिक फर्क, सब कुछ साफ महसूस होता है, लेकिन उनका साझा दुख और न्याय की वो अधूरी प्यास उन्हें करीब लाती है।
और वे एक असंभव सा गठबंधन बनाते हैं।
हाँ, खुद हत्यारों को ढूंढकर सजा देने का।
ये कहानी का एक बहुत अहम मोड़ है ना? दो ऐसे लोग जो शायद कभी एक दूसरे से बात भी ना करते,
बिल्कुल,
अब एक खतरनाक मिशन पर साथ हैं। और यहाँ सिर्फ दुख साझा नहीं हो रहा, उनके अपने पूर्वाग्रह, उनकी सामाजिक सोच, उसका टकराव भी शुरू होता है।
वे न्याय तो चाहते हैं, लेकिन जिस रास्ते पर निकल पड़ते हैं वो उन्हें वापस उसी अंधेरी दुनिया में ले जाता है जिसे वो पीछे छोड़ना चाहते थे, खासकर आइक। हाँ, यही तो विडंबना है, उनका तरीका कोई जासूसी वाला नहीं है।
तो फिर
वे जानकारी निकालने के लिए अपने पुराने हिंसक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। आइक का जेल का अनुभव काम आता है, बड़ी ली की, वो गली मोहल्ले की लड़ाई वाली फितरत।
वो अंडरवर्ल्ड में घुसते हैं।
हाँ, बेटों के दोस्तों से मिलते हैं, कुछ अंडरवर्ल्ड के लोगों से भिड़ते हैं। हर टकराव उन्हें सच्चाई के थोड़ा और करीब लाता है और खतरे के भी।
और धीरे धीरे तस्वीर साफ होती है।
हाँ, उन्हें एहसास होता है कि ये सिर्फ कोई नफरती अपराध या अचानक हुआ हमला नहीं था, इसके पीछे कुछ और है, कुछ ज्यादा बड़ा।
क्या पता चलता है उन्हें?
उन्हें पता चलता है कि उनके बेटों के पास एक वीडियो था।
वीडियो? कैसा वीडियो?
एक ऐसा वीडियो जिसमें एक स्थानीय श्वेत वर्चस्ववादी मोटरसाइकिल गैंग, रेयर ब्रीड नाम का, और इलाके का एक बहुत अमीर ताकतवर आदमी गैराल्ट, वो दोनों एक गंभीर अपराध करते हुए कैद थे उस वीडियो में।
और बेटे क्या करने वाले थे उस वीडियो का? ब्लैकमेल?
नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका इरादा गैराल्ट को कानून के हवाले करना था, वे न्याय चाहते थे।
ओहो, तो मतलब उनके बेटों की हत्या उनकी पहचान की वजह से नहीं?
नहीं, बल्कि उनकी नेकी की वजह से हुई, उनकी न्याय की भावना की वजह से।
ये खुलासा तो पिताओं के मिशन को, उनके गुस्से को एक बिल्कुल नया मतलब दे देता होगा।
बिल्कुल, आग में घी का काम करता है ये। उनका इरादा और पक्का हो जाता है। अब ये सिर्फ बदला नहीं है, ये अपने बेटों के सही होने की लड़ाई है।
और फिर कहानी क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है।
हाँ, आयक और बड़ी गैराल्ट की आलीशान हवेली पर धावा बोलते हैं।
ये तो बहुत खतरनाक होगा।
हाँ, एक भीषण खूनी संघर्ष होता है। गैराल्ट के गार्ड्स, रेयर ब्रीड गैंग के बचे हुए लोग सबसे लड़ते हैं और अंत में वे गैराल्ट तक पहुंच जाते हैं, अपना बदला पूरा करते हैं।
दोनों बच जाते हैं?
हाँ, बुरी तरह घायल होते हैं लेकिन जिंदा बच जाते हैं।
और इस सब हिंसा के बाद क्या उन्हें शांति मिलती है, वो सुकून जिसकी तलाश थी?
शांति? नहीं, शांति तो नहीं कह सकते, लेकिन एक अजीब सी खामोशी जरूर है। दुख शायद वैसा ही है, लेकिन वो जो अपराध बोध का बोझ था, वो कुछ हल्का हुआ लगता है। जैसे उन्होंने अपने बेटों के लिए कुछ किया, भले ही तरीका भयानक था।
और यहीं से शायद उनके असली भावनात्मक सफर का एक नया पड़ाव शुरू होता है।
हाँ, बिल्कुल। चलिए इन किरदारों के अंदर थोड़ा और झांकते हैं। आयक रैंडोल्फ।
आयक मुझे हमेशा व्यवस्था और नियंत्रण का प्रतीक सा लगता है। उसका वो लैंडस्केपिंग का काम, करीने से कटी घास, सजे हुए बगीचे।
हाँ, जैसे वो अपनी दुनिया को, अपने अंदर के उथल पुथल को काबू में रखना चाहता हो। एक पर्दा है वो।
वो अपने अतीत से, अपनी भावनाओं से भाग रहा है।
बिल्कुल। एक सफल सम्मानित आदमी बनना चाहता है, लेकिन बेटे की पहचान को पूरी तरह नाप ना पाने का अपराध बोध वो उसे अंदर ही अंदर खाता रहता है।
तो उसका ये सफर असल में आत्मस्वीकृति का है, ये समझने का कि बिना शर्त प्यार क्या होता है।
हाँ, ऐसा प्यार जो जज ना करें, जो शर्मिंदा ना हो। और बड़ीली के साथ उसकी ये साझेदारी, ये उसे सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं लड़वाती, ये उसे अपने अंदर के होमोफोबिया से, शायद थोड़े बहुत नस्लीय पूर्वाग्रहों से भी सामना कराती है।
और बड़ीली जेंकिंस, वो तो बिल्कुल अलग है।
हाँ, बड़ीली का दुख, उसका गुस्सा, वो ज्यादा जाहिर है, विस्फोटक है, वो दुनिया से लड़ जाना चाहता है।
लेकिन आइक के साथ ये सफर उसे भी बदलता है।
बहुत बदलता है। उससे अपने नस्लवाद का, अपने होमोफोबिया का आईना देखना पड़ता है। वो देखता है कि आइक, जिससे वो शायद पहले नफरत करता, अब उसका सबसे भरोसेमंद साथी है, भाई जैसा।
और उसे जीने का एक नया मकसद मिलता है।
हाँ, डेरेक के लिए लड़ना, और डेरेक की बेटी एरियाना, उसकी पोती, उसकी देखभाल करना, वो अपने टूटेपन में एक दिशा पाता है। वो सिर्फ बदला लेने वाला नहीं रहता, वो एक रक्षक बनता है, एक दादा।
और यही आइक और बड़ीली का रिश्ता, ये इस उपन्यास का दिल है ना?
बिल्कुल। कैसे शक और अविश्वास से शुरू होता है रिश्ता, और फिर साझा दुख, खतरा, मिशन, इन्हें एक ऐसे गहरे बंधन में बांध देता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।
कॉस्पी दिखाते हैं कि कैसे इंसानियत हमें नस्ल, वर्ग, संस्कृति की दीवारों के पार ले जा सकती है।
हाँ, पर यह रास्ता आसान नहीं है। ये कोई फिल्मी भाईचारा नहीं है, ये कमाया हुआ सम्मान है।
बहुत मुश्किल से कमाया हुआ।
और इस कहानी में इजाया और डेरिक, उनकी गैर मौजूदगी भी उतनी ही असरदार है।
हाँ, वे मारे जा चुके हैं, पर उनकी यादें, उनका प्यार, उनकी अधूरी कहानी, वो पिताओं के हर कदम पर साथ है।
वो उस स्वीकृति के, उस बेहतर दुनिया के प्रतीक हैं, जिसे उनके पिता जीते जी समझ नहीं पाए।
और उनकी बेटी एरियाना?
एरियाना वो भविष्य की उम्मीद है। वो आइक और बड़ीली को सिर्फ बदला लेने से आगे कुछ बनाने का मौका देती है, एक नई विरासत गढ़ने का।
ये हमें उपन्यास के मुख्य विषयों की ओर ले जाता है। सबसे पहले तो प्रायश्चित, रिडेम्पशन का सवाल।
हाँ, क्या इतनी गहरी गलतियों के बाद क्या सच में मुक्ति संभव है?
कॉस्बी का जवाब क्या लगता है, हाँ या ना?
जवाब हाँ है, पर बहुत शर्तों के साथ। ये आसान नहीं है, प्रायश्चित सिर्फ माफी मांगना नहीं है, ये एक्टिवली कोशिश करके बेहतर बनना है, चाहे कीमत कुछ भी चुकानी पड़े।
आईरेक और बडीली का हिंसक रास्ता भी क्या वो उनके बदलाव का जरिया बनता है? ये तो अजीब है।
हाँ, विडंबना तो है, पर शायद वो अपनी पुरानी खाल उतार फेंकते हैं, बहुत दर्दनाक तरीके से, लेकिन उतार फेंकते हैं, वे बदल जाते हैं।
उनका बदलना वो तकलीफदेह है पर सच्चा लगता है। वे अतीत मिटा नहीं सकते पर उससे सीखकर आगे बढ़ सकते हैं।
बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है वो प्रेम और पूर्वाग्रह का जटिल मुद्दा।
ये कैसे हो सकता है कि कोई अपने बच्चे से इतना प्यार भी करे और साथ ही उसकी पहचान के एक अहम हिस्से को लेकर इतने गहरे पूर्वाग्रह भी पाले?
उपन्यास दिखाता है कि ये दुखद सच्चाई है, इंसान बहुत जटिल है। यही वो रेजर ब्लेड टीयर्स वाली बात, शर्मिंदगी और अपराध बोध के आंसू, वो बहुत ताकतवर हो जाती है, ऐसे आंसू जो वे खुलकर रो भी नहीं सकते।
और ये पिताओं के चरित्र में बसी वो विषाक्त मर्दानगी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी से भी जुड़ा है।
हाँ बिल्कुल, वो पारंपरिक मर्दानगी जो सिखाती है कि मर्द रोते नहीं, भावनाएं दबाओ, कमजोरी मत दिखाओ और बात करने की जगह हिंसा करो।
ये कैसे रिश्तों को खोखला करती है, ये उपन्यास दिखाता है।
आइक और बडीली दोनों इसी सोच के शिकार भी हैं और इसे आगे बढ़ाने वाले भी। उनका ये पूरा सफर एक तरह से उनकी इस पुरानी पहचान को तोड़ता है, हिंसक तरीके से तोड़ता है, ताकि कुछ नया, ज्यादा मानवीय उभर सके। शायद सच्ची ताकत अपनी कमजोरी स्वीकार करने में है।
और जब शब्द काम नहीं आते तो वे हिंसा की भाषा बोलते हैं।
हाँ, और यही हिंसा और न्याय का वो मुश्किल सवाल उठता है। जब सिस्टम फेल हो जाए तो क्या व्यक्तिगत बदला लेना सही है?
उपन्यास क्या कहता है इस पर?
कोई सीधा जवाब नहीं देता। ये हिंसा के भयानक नतीजे दिखाता है, लेकिन साथ ही वो जो एक पल की संतुष्टि मिलती है बदले से, उसे भी दिखाता है, जो शायद अपराध बोध को थोड़ी देर के लिए शांत करती है।
पर क्या ये असली न्याय है?
शायद नहीं। असली शांति शायद बनाने में है, मिटाने में नहीं, एरियाना की परवरिश में है।
और ये सब कुछ वर्ग, नस्ल और सामाजिक न्याय के बड़े मुद्दों से जुड़ा हुआ है।
बिल्कुल, कॉस्बी दिखाते हैं कि कैसे दक्षिणी अमेरिका में व्यवस्था की असमानता, रैसीय तनाव, आर्थिक मुश्किलें इन किरदारों की जिंदगी और उनके फैसलों पर असर डालती हैं।
आईक्यू और बडीली अलग नस्ल और वर्ग से हैं, पर सिस्टम के हाशिए पर कहीं ना कहीं एक जैसे हैं।
हाँ, और उनका गठबंधन चाहे कितना भी मुश्किल भरा हो, वो अंतर नस्ली एकजुटता की एक संभावना भी दिखाता है।
अंततः ये परिवार और विरासत की कहानी भी है। परिवार का मतलब क्या है?
उपन्यास कहता है सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, परिवार स्वीकृति से बनता है, समझ से बनता है, कमाए हुए प्यार से बनता है।
आईक और बडीली का इरियाना को मिलकर पालने का फैसला, वो एक नई विरासत है।
हाँ, एक ऐसी विरासत जो उनके बेटों के प्यार का सम्मान करती है, उस प्यार का जिसे वे जीते जी समझ नहीं पाए।
अब जरा कॉस्बी के लिखने की शैली पर भी बात कर लेते हैं। वो क्लोज थर्ड पर्सन नैरेटिव इस्तेमाल करते हैं, है ना?
हाँ।
आईक और बडीली के नजरिए से कहानी बताते हैं।
हाँ, और इससे होता यह है कि हम पाठक उनके दिमाग में उतर जाते हैं। हम आईक की वो अंदरूनी शर्म, वो कंट्रोल की छटपटाहट
बिल्कुल
महसूस करते हैं। बडीली का वो विस्फोटक गुस्सा और फिर धीरे धीरे उसका बदलना, सब समझ आता है। हम सिर्फ बाहर का एक्शन नहीं देखते, अंदर का युद्ध भी देखते हैं।
और भाषा, कॉस्बी की भाषा के बारे में क्या कहेंगे?
भाषा में एक अजीब सा दोहरापन है। एक तरफ तो वो बहुत क्रूर है, बेझिझक, ग्राफिक, हिंसा के सीन पढ़कर आप असहज हो जाते हैं।
और दूसरी तरफ?
दूसरी तरफ वही भाषा जब भावनात्मक पल आते हैं या वर्जीनिया के देहात का वर्णन होता है तो काव्यात्मक हो जाती है, मार्मिक।
संवाद भी बहुत असली लगते हैं।
हाँ बिल्कुल, पात्र जैसे बोलते हैं वो उनकी पृष्ठभूमि, उनकी भावनाओं को एकदम सटीक पकड़ता है। छोटे तीखे वाक्य अक्सर बड़े भावनात्मक तूफान लिए होते हैं।
प्रतीकवाद का इस्तेमाल भी काफी अच्छा है।
बहुत, जैसे रेजरब्लेड टीयर्स खुद शर्म और असहनीय दुख का प्रतीक है।
आइक का लैंडस्केपिंग का काम?
हाँ, वो सिर्फ उसका पेशा नहीं, वो उसकी जिंदगी में व्यवस्था लाने की कोशिश है, अतीत की गंदगी पर कुछ सुंदर बनाने की कोशिश।
और बडीली का ट्रेलर?
वो उसके जीवन के ठहराव का, सामाजिक हाशिए पर होने का प्रतीक है। और जैसा हमने कहा, हिंसा वो खुद एक भाषा बन जाती है जब शब्द फेल हो जाते हैं।
और कहानी की सबसे गहरी विडंबना क्या है?
शायद यही कि बेटों की मौत ही पिताओं को वो सबक सिखाती है जो उन्हें जीते जी सीखना चाहिए था।
बिना शर्त प्यार, स्वीकृति, अपने पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना।
हाँ, ये समझ बहुत देर से आती है और कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है।
सच में ये उपन्यास दिल पर भारी पड़ता है। दुख, पछतावा और मुक्ति की उम्मीद, सबका एक कच्चा बिना लीपा पोती वाला चित्रण है।
हाँ, ये हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। हमारे अपने पूर्वाग्रह क्या हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, क्या हम उन्हें सच में पूरी तरह स्वीकार करते हैं।
एक और बड़ी ली की दोस्ती, उसमें कोई फिल्मी भावुकता नहीं है, फिर भी एक उम्मीद जगाती है।
हाँ, दिखाती है कि गहरे मतभेदों के बावजूद इंसानियत के धरातल पर रिश्ते बन सकते हैं, पनप सकते हैं।
ये याद दिलाती है कि प्यार सिर्फ महसूस करना काफी नहीं, उसे दिखाना पड़ता है, उसे जीना पड़ता है।
अंततः शायद कहानी यही कहती है कि प्रायश्चित वो अतीत को मिटाकर नहीं मिलता, वो तो हो ही नहीं सकता।
तो फिर कैसे मिलता है?
उस अतीत के दर्द को स्वीकार करके, उससे सीखकर और भविष्य में एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करके।
और ये कि परिवार सिर्फ खून से नहीं बनता,
साझा बलिदान और मुश्किल से कमाए गए प्यार से भी बनता है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ।
यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।